Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Aradesh Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
So, ya ekaha, to ya eka matlab kya? Wo jo ek deva. देवात्मा शक्ति लीजिए अथवा वो जो देव एक देव वो जो है या एक कालात्मयुक्तानी निखिलानी कारणानी तानी कारणानी कालात्मयुक्त निखिलानी तानी कारणानी अधिष्ठित अधितिष्ठते। हाँ, वो जो एक देव है वही काल से लेकर के पूर्व श्लोक में जो जो वर्णन किया गया वो सब में अधिष्ठान रूप से है अथवा सब के परिचालक के रूप में विद्यमान है। अधिष्ठान रूप से भी चिंतन कर सकते हैं अथवा परिचालक के रूप में, ये दो जो रखा ना इसमें भी विचार कर सकते हैं। क्यों, कई लोगों को ऐसा विचार है कि अधिष्ठान ही होना चाहिए, ठीक है, परंतु तो मुझे मेरा स्पेशली एक है परिचालन बल सोचने में मुझे अच्छा लगता है कि सब जो वो शक्ति है वो जो एक देव है वो सब को चला रहे हैं। मुझे ये चिंतन करने में थोड़ा सहज अनुभव होता है। तो अधिष्ठान रूप से वो एक शक्ति को चिंतन कर सकते हैं अथवा परिचालक, वही एक शक्ति जो सब भूतों को काल से लेकर के आत्म पर्यंत सभी को परिचालन करने में सक्षम है। वो जो एक देव आत्म शक्ति है वही शक्ति का साक्षात्कार ऋषियों ने ध्यान योग के द्वारा किया। कारणानी तानी निखिलानी, ये जो विशेषण है निखिल कारणानी समस्त उसके परिचालन व्यवस्था के अंतर्गत सब है, उससे बाहर कुछ भी ऐसा। वो जो अष्टादश अध्याय में भगवान ने इसी ऐसे ही एक श्लोक है, श्लोक उठ नहीं रहा है, ऐसा अर्थ है उस देव को पूजन करो जो जिससे सब कुछ सृष्ट है और जिससे सब कुछ परिचालित है, वो जो देव है उनकी ही उपासना करो, उसी से तुम्हें सिद्धि को प्राप्ति हो सकती है। इसलिए वैसा जो एक शक्ति है देवात्म शक्ति, उस शक्ति का साक्षात्कार ध्यान योग के अनुष्ठान से किया। अब थोड़ा सा भाष्य का चिंतन करें, ऐसे सामान्य अर्थ तो आ गया ना। ते ध्यान योगेति ध्यानम नाम चित्तैकाग्रम तदेव योगो युज्यते अनेन इति ध्यातव्य स्वीकारोपायः। ते ध्यान योग इति, ये तो पूरे श्लोक का भाष्यकार का ये रीति है। ते ध्यान योग, इस श्लोक का व्याख्यान प्रारंभ किया जा रहा है। ध्यानम नाम, ध्यान किसको कहते हैं भाई? ध्यान को लेकर के बड़ा गड़बड़ है। अब ये जो आत्मशक्ति ध्यान का क्यों आवश्यकता है, एक तो ये बात है ध्यान जरूरी है, अथवा ध्यान जरूरी है तो ध्यान का क्या डेफिनेशन है, दो तत्व है। तो एक तो ऋषियों का जो अनुभव है उसको देख करके ऐसा लगता है कि ध्यान की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि जिस विचार जिस शक्ति के अनुसंधान में वे लोग थे वो कोई दृश्य वस्तु नहीं है कि इसको आप देख रहे पेंसिल, और इसको आप आंखों के द्वारा देख सकते हैं अथवा अन्य कोई चीज हो तो शब्द सुन सकते हैं, रसना इंद्रिय के द्वारा जान सकते हैं, स्पर्श करके समझ सकते हैं। तो ऐसा कोई स्थूल वस्तु तो नहीं है कि जो आंखों के द्वारा अथवा आपके पास जितनी भी इंद्रियां हैं उससे आप समझ सकते, जान सकते, पहचान सकते हैं। अथवा ऐसा भी कुछ वस्तु है जो विज्ञान को स्वीकार है कि जो सूक्ष्म है, कि जो सूक्ष्म वस्तु है उसकी जो तत्व है वो इस आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु इसमें एक कुछ विशेषताएं, कुछ वैशिष्ट अगर बढ़ा दिया जाए तो उसके जो सूक्ष्मता है उसको हम पहचान सकते है कि नहीं। हम तो लैब में यही करते हैं ना, जो अणु है, परमाणु है, माइक्रोस्कोपिक व्यू के द्वारा उसको लक्ष्य गुण बढ़ा देते हैं। इस जो पावर है इसको लक्ष्य गुण बढ़ा करके इसके जो अणु परमाणु कण कण को हम उसको जान लेते हैं। तो इसीलिए दो विधि है कि इस आंखों से आप कुछ जान सकते हैं अथवा इस आंख के द्वारा जो भी आपके पास इंद्रिय, इसके अगर सामर्थ्य नहीं है तो इसके सामर्थ्य को आप बढ़ाइए, बढ़ा करके उस तत्व को, उस चीज को आप देख सकते, अनुभव कर सकते। परंतु जो भी विज्ञान का, साइंस का विचार है, विश्लेषण है, चिंतन है, दर्शन है, ये सब भूतों निर्मित है, इतना ध्यान रखिएगा। हम बड़े अध्यात्म के साथ विज्ञान का तुलना करते रहते हैं, विज्ञान ने ये किया, विज्ञान ने वो किया। भाई विज्ञान ने जो भी किया सब दृश्यों में किया, पंचभूत निर्मित उसी में उनका विचार है, गमन है, स्थिति है, प्राप्ति है। उससे बाहर की जो विद्या है उसके लिए आप इंद्रियों के द्वारा, और खास करके ऋषियों ने जिस तत्व का विमर्श किया, विचार किए, वो उनका तो ना शब्द है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, ना स्पर्श है। तो उस अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम, आगंधम, ऐसा जो तत्व है उसको आप इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए इंद्रियों के विषय वैशिष्ट को बढ़ाने पर भी आप उस तत्व को अनुभव नहीं कर सकते। तो वो जो तत्व है आतिंद्रिय, उसको आप कैसे जान सकते हैं, उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसलिए ये सब बात कर रहा हूं कि ध्यान का क्या वैशिष्ट, क्यों हम ध्यान में जाए ना, हम तो ऐसे ठीक है, तो ध्यान में जाने के लिए क्या विशेषता है, क्यों हम ध्यान में बैठे, ऋषियों ने सब छोड़कर के क्यों ध्यान में निमग्न हुए, समाहित हुए। ते ध्यान योगानुगता, ये ध्यान योग का अनुगत क्यों उनको करना पड़ा। तो यही है कि दृश्य वस्तुओं को हम वैशिष्ट, इंद्रियों के विषय वैशिष्ट को बढ़ा करके माइक्रोस्कोपिक व्यू के द्वारा हम गुह्य अथवा गहन जो तत्व है उसको हम समझ सकते, अणु परमाणु, और वो भी अगर डायनामिक हो तो भी हम समझ सकते हैं। परंतु इतना निश्चय है कि इससे बाहर के विचार ऋषियों के हृदय में हैं, उसको हम कैसे जान सकते। इसलिए देखिए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये है पंचभूत। और इस शब्द, स्पर्श, रूप, रस को ग्रहण करने वाला कौन है ना, उतना जल्दी दौड़ दौड़ के मत जाइए। इंद्रिय है, पांच इंद्रिय को क्यों छोड़ रहे हैं, सारे इंद्रिय आपके पास है, ये मन। तो विषय को अनुभव करने के लिए पंच ज्ञान इंद्रिय, इंद्रिय, तो इंद्रिय के द्वारा इस विषय को आप जान सकते। ऋषियों ने कहा इससे जब भी जानोगे वो न्यूनता को ही प्राप्त करोगे, तो शोधन वहां भी करना है। और फिर साथ साथ कहा इसके बाद मन, ये ठीक है कि नहीं, मन हमेशा संकल्प और विकल्प में लगा रहता है, तो मन को भी शुद्ध करो। तो यहां तक तो छोड़ो, फिर जाकर के बुद्धि, ये जो ध्यान योग की गति स्थिति क्या है, ये बुद्धि की शुद्धि होने पर अब हमारे अंदर ध्यान की योग्यता है। इसीलिए यहां आकर के कर्मकांड उपासना कांड की एक सार्थकता जीवन में, ये जो शुद्धि है बुद्धि की शुद्धि, ये एकाएक नहीं होने वाला है, ये शास्त्रीय विधि विधान से, अनुष्ठान से, कर्म उपासना आदि आदि के द्वारा चित्त की शोधन शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि होगी और तब जाकर के ते ध्यान योगानुगते गता। इसलिए भगवत भक्तजन हाँ वो ध्यान योग है। इसीलिए आपको आप लोगों ने पढ़ा है ना, कश्चित धीर, ये धीर कब बन सकते भाई? हम लोग सब प्रयत्न करते हैं ध्यान लगाने, धीर हुए बिना तो धीर कौन हो सकता है? आवृत्त चक्षु, अर्थात सारे करणों को, इंद्रियों को ऐसे आप बंद करके बैठ जाओ ये नहीं है, अर्थात उस योग्यता। और भाई हम आंख बंद करके बैठ गए हैं इससे बड़ा मैं ध्यान करने लग गया, ऐसा नहीं है। हम आंखें तो बंद कर सकते पर तो मणिराम जो है बहुत, ये कष्ट, ये अनुभव है, कष्टकारक है, तो उस मणिराम को स्थिर करने के लिए शुद्धि की जरूरत है। कर्म करो, सेवा करो, अध्ययन, ये स्वाध्याय करो, ये सब के द्वारा चित्त की शोधन होता रहेगा होता रहेगा, और एक समय आपके अंदर वो योग्यता कि आप बैठे और मन शांत, बुद्धि की शुद्धि, और तब जाकर के आपके हाथ में कुछ लग सकता है। इसीलिए कहा कि कश्चित धीर, धीर होने के लिए आवृत्त चक्षुर अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व की अगर चाह है, इच्छा है, तो आवृत्त चक्षु हो जाओ। आवृत्त चक्षु का कब हो सकता है? जब उनके चित्त में जो धीरता है, वो धीर व्यक्ति ही अमृतत्व को प्राप्त कर सकते। ये तो ध्यान योग में जाने की विधि है, और तब जाकर के अगर हम बैठे ध्यान करने में, तब वो देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम, वो जो निगूढ़ शक्ति है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। ये प्रोसेस है। अब ध्यान का क्या डेफिनेशन है? वेदांत में जो ध्यान का डेफिनेशन है, भाष्य को देखिए, ध्यानम नाम चित्तैकाग्रम, साफ साफ। लेकिन यही ध्यान हम लोग करते कि नहीं? जब आप ध्यान करने बैठते ये ध्यान करते हैं क्या? करते हैं भाई, हाँ चित्त के एकाग्र, वो विचार देखिए, वो जो आप करते हैं, जो हम करते हैं, वो ध्यान नहीं है, ऐसा निश्चय मत कीजिए। अचिंतन का चिंतन, इतना सुंदर सुंदर शब्द आप लोग व्यवहार करते, बहुत अच्छा लगता है। अचिंतन का चिंतन बहुत सुंदर। इसमें मैं वही बात जा रहा हूं कि देखिए, भक्त लोग भी ध्यान करते हैं ना, जो भक्त है भाई, भक्त जो ध्यान करते वो भी ध्यान है, और कहीं ना कहीं हम भी वो ध्यान करते। कम भले हम कितना भी वेदांती बोलते रहे कि हम बड़े वेदांती है, कहीं भक्त के ध्यान हम भी करते हैं। कैसे? कहते भक्त लोग जो ध्यान करते वो क्या है, भगवान के गुण, भगवान की लीला, ये सब जो चिंतन करते हैं वो भी एक प्रकार के ध्यान है। उनकी लीलाओं को, उनके गुणों को जो आप चिंतन करते कि वो क्या लीला किए हैं, वो जो आप उस लीला के साथ चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते लगाते, ये भी ध्यान है, भक्त की ध्यान है, वेदांत की ध्यान नहीं है। इतना इतना जानना चाहिए, नहीं तो हम लोग बड़े संतुष्टि है ना इस मामले में, भले विषय में संतोष न हो, ये ध्यान जप में तो बड़ा शब्द, थोड़ा बहुत कर लिया तो वाह, आज तो बड़ा अच्छा मेडिटेशन। हाँ, ध्यान जो भी आप करते हैं तो वो क्या ध्यान कर रहे उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर चिंतन का ध्यान कर रहे हैं, लीला का, कथा का चिंतन कर रहे हैं कि भगवान वृंदावन में ये किए, उस लीलाओं के साथ आपकी चित्त वृत्ति एक हो गया, वो भी ध्यान है, परंतु वो ध्यान वेदांत का नहीं, वो भक्त के ध्यान है, वो भी उपयोगी है, वो भी सफल बना सकते हैं, वो ध्यान है। द्वितीय ध्यान जो है कुछ लोग योगी लोग करते हैं। योगी का जो निश्चय है लक्ष्य ये है तो लक्ष्य में चित्त वृत्ति को टिकाना, ये योग का ध्यान है। कुछ उन लीलाओं में क्या होता है ना, एक एक दृश्यों में आपका चित्त वृत्ति जो है घूमती है, और योगियों का चित्त वृत्ति जाकर के ये लक्ष्य है तो इसमें अटक गया, टिक गया, बस अब वहां से हिलना डुलना नहीं है। सांख्यों का जो ध्यान है वो क्या है, सांख्य लोग जो ध्यान करते हैं, इसलिए ध्यान तो सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि ध्यान बिना कोई जी रहे हैं। भक्त है उनको भी ध्यान करना ही पड़ेगा बाबा, कोई चारा नहीं है, लीला गुण कथन का चिंतन। योगी है वो तो ध्यान योग अभ्यास करते ही है, परंतु सांख्यवादियों का ध्यान का लक्षण करते हैं रागोपहतिर ध्यानम। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सांख्य का कुछ हद तक वेदांत के साथ मिलता है। रागो अपहतिर ध्यानम, कहते विषय अथवा वस्तु ज्यों की त्यों पड़ा रहे, उसमें न तो राग है न विद्वेष है। रागो अपहतिर अर्थात जब हम किसी विषय को लीला को ले अथवा गुणों को ले उसमें आसक्त होकर के हम चिंतन करते हैं, रागतः चिंतन करते हैं, परंतु जब सांख्य ध्यान में बैठते हैं तो उसमें राग नहीं, आसक्ति नहीं, कोई राग नहीं है कि ये बहुत अच्छा है इसका चिंतन करें, मन बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा किसी भी वस्तु ज्यों के त्यों पड़ा रहे, मतलब उसके साथ कोई विद्वेष भी नहीं कि ये अच्छा नहीं है इससे हमको मन हटाना। कई बार हम लोग ऐसे भी करते हैं, विद्वेष भी नहीं, अर्थात वस्तु के साथ ऐसा निर्लिप्तता अपहति, वो है ध्यान। और वेदांत का ध्यान क्या है वो तो भाष्यकार अर्थ कर ही दिया, ध्यानम चित्त एकाग्रम। वेदांत का ध्यान है एकाग्रता, मीन मधुसूदन सरस्वती आनंद गिरी जी लिखते हैं निर्विषयम, ध्यानम निर्विषयम। वेदांत का जो अल्टीमेट ध्यान है वो तो महाराज निर्विषयता, ऐसा ध्यान कर रहे हैं, ध्यान ध्येय ध्याता तीनों का त्रिपुटी का बिल्कुल निर्विषयता, वो है ध्यान। और वो ध्यान कब प्राप्त कर सकते हैं, इसी को आनंदगिरी जी और सीधे सरल शब्द में लिखते हैं, जिसको आप लोग जानते हैं, विजातीय विरहित सजातीय प्रत्यय धारा ध्यानम। कोई भी एक शब्द हो कोई भी रूप हो, जब आप विजातीय प्रत्ययों को हटा करके सजातीय प्रवाह को आप बढ़ाते जाते हैं, उसमें जो एक तन्मयता, ये ध्यान के प्राथमिक स्तर है। लेकिन अल्टीमेट स्तर क्या है, निर्विषयता। वेदांत के जो ध्यान है निर्विषयता, परंतु जब हम ध्यान में बैठेंगे तो सर्वप्रथम है कि कोई भी एक मंत्र हो कोई एक शब्द हो कोई एक ध्येय वस्तु हो ऑब्जेक्ट जो भी लेंगे आप सब्जेक्ट, उसको आप जो है एकाकार चित्त वृत्ति जो है धारा प्रवाह, उसमें विजातीय प्रत्यय विजातीय धारा आकर के आपके उस सजातीय को विच्छेद न करे। और ऐसे करते 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 एक समय ऐसा उपस्थित होगा कि कोई भी विषय नहीं है, निर्विषयता। तो वेदांत के मत में वही ध्यान है, ध्यानम नाम निर्विषयम। इसीलिए महाराज ध्यान इते ध्यान योगानु, और तब जाकर के उस निर्विषय ध्यान में ही तो आत्मशक्ति का अनुभव कर सकते हैं ना। मतलब जो वेदांत ऋषियों ने कौन शक्ति का अनुभव किया भाई, अभी हम कुछ किसी उपाधि को किसी रूप को किसी गुण को लेकर चल रहे हैं तो इसके चिंतन करते करते उस रूप के उस गुण के ही पर्यवसान में पहुंचेंगे। अगर निर्विषय का चिंतन करे तो फिर वो जो आत्मशक्ति है उसको वो प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवत पाद आचार्य शंकर लिखा है चित्त की एकाग्रता सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, एकाग्रता के द्वारा तदेव, ये जो तदेव योगो जुज्यते, और ऐसे एकाग्रता के द्वारा उस परमात्म शक्ति के साथ वो जूझ सकता है। जूझ मतलब युक्त हो सकते हैं, युक्त हो सकते हैं। ये है ध्यान। कल आगे चलेगा, आज तो समय हो गया। हरिओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरा भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।